श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
स्थित प्रज्ञ के लक्षण आप श्रवण कर रहे हैं। मूलतः सत्य तक पहुंचने की सात सीढ़ियां हैं। सातवीं सीढ़ी नहीं, सातवीं तो मंजिल है। छठी से भी आप मंजिल को स्पर्श करते हैं, मंजिल का सुख मिलता है। तो जो मंजिल है उसका नाम है तुरिया। मंजिल के पहले की जो स्थिति है उसका नाम है पदार्थाभावनी। पदार्थों का अभाव हो जाता है। जैसे मैंने कभी आपको एक बार दृष्टांत दिया था, बुद्ध जब घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, उनकी पत्नी उन पर बहुत नाराज होती है, बहुत डांटती है। थोड़ी देर बातचीत करते हैं, वो अज्ञान में परिपूर्ण है। कौन? बुद्ध ज्ञान में परिपूर्ण है। जब व्यक्ति अपनी जगह परिपूर्ण होता है तो हिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कुछ भी कहा लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। समय पूरा हुआ, वो वहां से चलने लगे। ये असंशक्ति का आज जो है ना, स्वेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, अभी असंशक्ति, पदार्थाभावनी होता है। असंशक्ति का आज श्लोक चलेगा, ध्यान रखना। इतने दिन से प्रेमपुरी में मत्था कूट रहे हो। हाँ, ऐसे ही है, नाच गा करके जिंदगी बर्बाद कर दी फालतू। उसका दृष्टांत असंशक्ति का है। बुद्ध चलने लगे, उन्होंने कहा हिंदुओं की परंपरा है कि कुछ भिक्षा लेकर के व्यक्ति जाता है, क्योंकि भाष्यकारों ने भी इसके पहले स्पष्ट किया है, सही चलाने के निमित्त जो प्रारब्ध होता है वो ज्ञान के बाद भी समाप्त नहीं होता, वो रहता है। तो उन्होंने कहा कि भिक्षा दो कुछ। नैतिक अधिकार है सन्यासी का भिक्षा पे। तुम्हारे यहां भी कोई भिक्षा मांगने आए तो देना भिक्षा। ऐसा नहीं बोला आगे बढ़ो, आगे तुम्हारा चाचा बैठा है। अधिकार है, तुम्हारे पास सन्यासी का हिस्सा है, वो हिस्सा तुम्हारे को शांति से कभी रहने नहीं देगा यदि दोगे नहीं जब तक उसको। इसलिए भगवान ने गीता में लिखा है, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि अन्नत्याज्यम इति मे मतम। इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भिक्षा दो, उसने कहा। तो जब वो भिक्षा लेने लगा तो वो अपने लड़के का हाथ पकड़ करके उसने बुद्ध के हाथ में पकड़ा दिया। एक अज्ञानी व्यक्ति ने ऐसी क्रिया कर दी कि ज्ञानी अचंभित हो गया। ऐसा तो कभी बुद्ध ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। कैसा करेगी वो तो सोचती तुम बाबा जी बन गए तो पूरा ही कुल खत्म कर दिया तुमने। कुल का एक ही चिराग था, उसको पकड़ा दिया उसको। लेकिन अच्छे लोगों का ही अच्छे लोगों से मिलन होता है। अर्जुन कृष्ण से मिले, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले, नीच लोग नीचों से मिलते हैं, कंस जरासंध से मिला, तो बुद्ध ने पूछा ये तू क्या कर रही, तेरा दिमाग तो ठीक है? एक पूरे राज्य का उत्तराधिकारी है ये। उसने कहा अभी दिमाग अभी ठीक हुआ, अभी तक खराब था। यहां कौन सुखी हुआ अभी तक? पर ऐसा कहते हैं कि बुद्ध बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे। आप कभी उनका पढ़िए, कहानी उनकी पढ़िए, आप बहुत प्रतिभावान थे। और वो व्यक्ति यदि छोड़कर के चला जाता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को दुख दिखा। और उसने कहा कि दुख एक जगह नहीं, वैराग्य होना है तो सब जगह से होना है। फिर हैरान हो गया, उसने कहा क्यों ऐसा कर दिया? उसने कहा दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। राजा की लड़की थी, शिक्षा दीक्षा थी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिस व्यक्ति में तुम्हारे जैसे शांति मेरे को दिखाई पड़ती हो। एक अशांत व्यक्ति भी, एक व्याकुल व्यक्ति भी जिनसे बात करके, जिनके चरणों में बैठ करके शांति का अनुभव करे, वो कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। जब आपकी शिक्षा दीक्षा होती है उस समय आपकी शिक्षा में किसी चीज का महत्व बैठ जाता है। इसकी शिक्षा में किसी का महत्व, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जगत में जिसका हमारी बुद्धि में महत्व बैठ सके। इसको बोलते हैं असंशक्ति। ये जरा सुन लीजिए श्लोक क्या है, समझ बड़ा राज है इस श्लोक के अंदर। यह सर्वत्र अनविस्नेह तत्त प्राप्य सुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा। श्री कृष्ण कहते हैं जब सत्य के करीब व्यक्ति पहुंच जाता है, क्योंकि ये असंशक्ति जो ये है ना, ये एकदम पदार्थाभावनी से लगी हुई सीढ़ी है। एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से लगी होती है और हर सीढ़ी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मंजिल के साथ कोई ना कोई संबंध होता है, कोई ना कोई। कृष्ण कह रहे हैं यह सर्वत्र अनविस्नेह। भगवान शंकराचार्य ने अर्थ कर दिया इसका, यो मुनि सर्वत्र देह जीवितादिषु अपि अनविस्नेह। उस आदमी की निष्ठा इतनी ऊंची होती है कि जीवन के प्रति भी उसका मोह नहीं होता। यदि आपको दृष्टांत दूं तो जड़ भरत जी महाराज, शंकराचार्य भगवान का वाक्य है, देह जीवितादिषु, उनके गले में माला डाली, माला पहन ली, प्रेम से भोजन कराया तो प्रेम से भोजन कर लिया, बलि देने के लिए ले गए तो बलि मना नहीं किया। देह जीवित आदिशु अपि, वो है ज्ञानी, वो है महापुरुष। कहां उन लोगों के दर्शन होते हैं अभी, अभी तो व्यक्तियों के कपड़ों के प्रति आकर्षण है। जितने ज्ञानी आजकल के घूमते हैं उनको देख लीजिए आप। अब आप बोलोगे निंदा करता है, करूं क्या, अब ये लिखा ही ऐसा है। तो खास दुकान से कपड़े चाहिए। जिस व्यक्ति का जीवन एक धागे में उलझा हुआ है, इस धरती के धागे में, उसका धागा उससे कैसे जुड़ेगा भाई? कृष्ण कहते हैं सर्वत्र अनविस्नेह, एक जगह नहीं, सब जगह। और अंतिम में इसका अर्थ शंकराचार्य ने कर दिया, जीवन तक मोह नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है यदि उसे जीवन की जरूरत है तो वो जीवन रखेगा, और यदि उसे ही जीवन की जरूरत नहीं है तो फिर जीवन नहीं रखेगा। इसलिए आचार्य ने लिख दिया जीवन तक की बात कर दी आचार्य ने। और ये बातें कोई काल्पनिक नहीं है, बड़ा टेढ़ा मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जब आचरण करे तो बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भागवत आप श्रवण करते हैं, ऋषभ देव का चरित्र आता है, सुना है, जंगल में आग लग जाती है, बचने की कोशिश नहीं करे तो आपने यदि पढ़ा होगा वहां पे गौर करके तो क्या कर दिया था उन्होंने अंतिम में मालूम है आपको? सब भागवत सुने हुए लोग बैठे हैं इधर, उन्होंने मुंह में पत्थर रख लिया था। बड़ा क्लिष्ट जीवन है उनका, पढ़ना आज जाके घरों में। उन्होंने कहा यदि आग लग गई, जंगल में बैठे हैं, यदि अस्तित्व को अभी जीने की इच्छा नहीं है तो मर जाओ, बात खत्म हो गई। यह सर्वत्र अनविस्नेय, सर्वत्र सब जगह किसी के प्रति नहीं, कोई लगाव नहीं। आपने देखा जब कृष्ण जा रहे थे, रथ आया, उनका सारथी आता है, ऐसा धक्का दे देते हैं, वहां लिखा है, थोड़ा सा गिर जाता है कि कृष्ण पीछे मुड़ के नहीं देखते। वृंदावन और मथुरा की दूरी कितनी रही होगी, बड़े लोगों ने गाने बनाए, बड़े ज्ञान, बुरा नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, अच्छा है। वैराग्य की कहानी सुना सुना करके लोगों ने बड़े बड़े महल बना दिए, मालूम है तुमको? कृष्ण कहते यह सर्वत्र अनविस्नेह, क्या हुआ फिर? तत्त प्राप्य सुवा सुवम, जीवन में कभी शुभ की प्राप्ति होती है, कभी अशुभ की प्राप्ति होती है। कभी हम वो जो चाहते हैं कभी वो मिल जाता है, कभी जो नहीं चाहते वो मिल जाता है। मनुष्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब वो चाहता है जब वो मिल जाए, और मनुष्य के दुख का ठिकाना नहीं रहता जब वो मिल जाए जो वो चाहता नहीं है। कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं करना। यही तो प्रारब्ध है। कभी जिंदगी में कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, परिणाम आते हैं जो नहीं चाहते वो मिलता है। कभी जीवन में कुछ ऐसा किया जो करना चाहिए था, परिणाम आते हैं जो चाहते हैं वो मिलता है। लेकिन आप लोग स्वाध्याय करते हैं, सूत्र एक वेदांत परिभाषा में लिखा है, वेदांत परिभाषा पढ़ी होगी आप लोगों ने। किसने लिखा है वेदांत परिभाषा? है? चलो ठीक है, धर्मराजा धुरेन्द्र ने लिखा है उसको। वहां लिखा है तद यथा इह कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेव आमुत्रह पुण्य चितो लोक क्षीयते। धर्मराजा लिखते हैं आदमी की आंखों के सामने आदमी की बनाई हुई दुनिया खत्म हो जाती, क्योंकि जगत में जो भी बना है उसका उपादान कारण जो है वो कर्म है। क्या है? कर्म है। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, ऐसे बनी हुई प्रत्येक चीज का उपादान कारण। उपादान कारण यदि अच्छा होगा तो उससे निर्मित वस्तु भी अच्छी होगी। इसलिए शास्त्रों में कर्म के सुधार के ऊपर जोर दिया गया। आपके पास में अनंत भोग्य पदार्थ हैं, आप में भोगने की सामर्थ्य नहीं तो फिर क्या मतलब है उसका? फिर वही आपके दुख का कारण बन जाते हैं। लेकिन जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जब पदार्थों से आपका कुछ लेना देना नहीं होता। उसी के लिए कह रहे हैं यह सर्वत्र अनविस्नेह तत्त प्राप्य शुभा अशुभम। जीवन में कभी शुभ प्राप्त होता है, कभी अशुभ प्राप्त होता है, कभी अनुकूलता प्राप्त होती है, कभी प्रतिकूलता प्राप्त होती है। नियम है जिंदगी का। आगे कृष्ण कह रहे हैं, देख लीजिए, नाभिनंदति न द्वेष्टि। अभिनंदन का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता है। कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में किस चीज को देख के आदमी को प्रसन्न होना है? अरे जब हमें ही नहीं रहना है, या तो भोगता नहीं रहता या तो भोग्य नहीं रहता, युधिष्ठिर ने कहा। महाभारत में जब जाने लगे स्वर्गारोहण में, कहा इतनी लड़ाई करी, इतना संघर्ष किया, इतने लोगों को मारा और सब छोड़ के चले जाओ, जब जाने लगे तो बड़ा दुख हुआ भीम को। जीवन का एक शाश्वत नियम है, एक कोई महात्मा था, बड़ी बेचारा एक एक पैसा जोड़ता, कंजूस, महात्मा भी कंजूस ही होते हैं ना, यदि तुम भी महात्मा बन जाओगे तो क्या होगा, फिर कपड़े ही तो बदल गए, बड़ा जोड़ के इकट्ठा करके रखा। बाद में उसका ऐसा चेला आया कि जितना उसने इकट्ठा करके रखा गांजे में फूंक दिया उसने, समझा बात खत्म। भर्तृहरि लिखते हैं, तीसरा गति भवन्ति वित्तस्य, धन की तीन ही गतियां हैं, दान, भोग और नाश। यो न ददाती न भुंगते, तीसरी गति तो उसकी होने वाली है। याद आई उसको, इसको मार के ये मिला, इसको मार के ये मिला, इसको मार के ये मिला। युधिष्ठिर ने कहा, देख रास्ते के लिए नाश्ता भी नहीं बांधना, पानी की बोतल भी नहीं रखना, क्योंकि सफर इतना लंबा है, कितनी पानी की बोतलें रखोगे तो तुम गधे बन जाओगे। स्वर्गारोहण का रास्ता कितना लंबा है, कितना लाद के ले जाओगे, कहां तक लाद के ले जाओगे। भीम ने कहा, कुछ नहीं ले जाना है, थोड़ी बादाम उदाम कुछ ले चलें साथ में, सेक साक की कुछ। उसने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही खाली हाथ चलो। और तुम्हें बताऊं बात, भीम को कहते हैं महाराज युधिष्ठिर, हर आदमी यहां संघर्ष करके ही इकट्ठा करता है। अब वो बेईमानी के लिए संघर्ष करता है या कुछ भी करता है, लेकिन संघर्ष तो करता ही है, बल्कि पापी व्यक्ति और ज्यादा संघर्ष करता है। बड़ी सावधानी, बड़ा डर संघर्ष करता है। और जैसे संघर्ष से हमने प्राप्त किया, सभी लोग वैसे ही संघर्ष से प्राप्त करते हैं। और आप इतना समझ लो भीम, हमारे ऊपर भगवान की इतनी ही कृपा है कि हम होश में हैं और सब छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के तो सबको ही जाना है, लेकिन हम होश में हैं, हमें इसके प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि हमें यह पता है, हमसे पहले महाराज दुर्योधन कहते थे ये मेरा है, उसके पहले महाराज धृतराष्ट्र कहते थे मेरा है, उसके पहले महाराज पांडु कहते थे मेरा है, उसके पहले शांतनु कहते थे मेरा है। सबका छूटा, लेकिन जब छूटा तब उनको ये पता नहीं था कि ये मेरा नहीं है, इसलिए आसक्ति रह गई इसमें। और हमारे ऊपर कृष्ण की इतनी कृपा है शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, और हमें ये बोध हो गया इसलिए सब छोड़ करके चलो, इसी का नाम है स्वर्गारोहण। किसी चीज की तरफ मत देखो, न सोने के मुकुट की तरफ देखो, न हस्तिनापुर के राज सिंहासन की तरफ देखो, ये सब छोड़ के जाना है। इसका नाम है यह सर्वत्र अनविस्नेह। अनविस्नेह समझते हो? आपका किसी के प्रति प्रेम है कि नहीं? किसी के प्रति प्रेम है? सोने की चूड़ी हो, ये सब बढ़िया है, सब सोने की चूड़ी के प्रति प्रेम। जब मर जाओगे तो कोई निकाल लेगा, कौन निकालेगा पता नहीं, बहू निकालेगी, बेटी निकालेगी, इधर उधर देखती भी रहेगी, उसको पता नहीं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लेकिन यदि कोई पहले ही निकाल करके दे दे, युधिष्ठिर ने कहा हमारा भाग्य यही है, हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा यही है, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी महाराज अर्जुन के वहां से लौटने के बाद में हमारे चित्त में स्वाभाविक इस वस्तु के प्रति वैराग्य पैदा हो गया। खंडनकार ने खंडन में लिखा है, येसा अद्वैत वासना पुंसाम ईश्वर अनुग्रहाद एव। भगवान की सबसे बड़ी जीव के प्रति ये कृपा है महाराज, कि पदार्थों के प्रति ममत्व वाली बुद्धि नहीं है। सबसे बड़ी भगवान की कृपा ये कि मेरा नहीं है, बस मैं इसका सेवक हूं, मेरा नहीं। और ये ज्ञान कोई झूठा है ऐसी बात नहीं, ये ज्ञान सच्चा है। कोई आदमी मर जाता है ना, उसकी जगह पे दूसरे आदमी का नाम चढ़ाने वाला होता है ना, तो नाम चढ़ाने वाला भी 10 बारी जांच करता है कि कहीं ऐसा है नहीं कि पहले वाला बैठा तो नहीं अभी है। निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वस्तु कभी ये स्वीकार नहीं करती कि मेरा स्वामी ये है, स्वीकार करती है, कहती है वस्तु का स्वामी परमात्मा है, उसी को बोलते हैं ईसा अवास्यमिदं सर्वम्। ये शब्द बोध जब मनुष्य के अनुभव में आने लगता है तो आदमी की आसक्ति धीरे 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 ढीली होने लगती है। संस्कृत में एक नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, आप लोग सब नाटक ही करते हो, नहीं करते हो? नाटक नाटक नहीं करते हो, बड़े अच्छे लोग हो। तो उसका नाम है स्वप्न वासव दत्तम, पढ़ा है, बहुत अच्छा है। उसमें एक शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द है, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है मालूम है आपको? महाकवि लिखते हैं, दुखम ही न्यासस्य रक्षणम्। दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी चीज की सेवा करते हुए यह निश्चय कर लेना कि इसका मालिक दूसरा है। संस्कृत में न्यास शब्द का अर्थ होता है ट्रस्टी, उसको बोलते हैं न्यास मंडल। पुराने यहां जो महाराष्ट्र के अंदर भी पहले जो लिखा रहता था ना, वो न्यास मंडल लिखा रहता था, न्यास। सबसे कठिन चीज है न्यास का, धरोहर का रक्षण करना। कोई व्यक्ति कहीं तीर्थ स्थान गया और अपनी धरोहर आपके पास में देके चला गया है, तो दुनिया में उस धरोहर का रक्षण करना सबसे कठिन काम है। ऐसे ही ये परमात्मा की दुनिया है और हम लोग इसके न्यासी हैं। क्या हैं न्यासी? मैंने दृष्टि। हमको इसका रक्षण करने के लिए भेजा है। रक्षण का मतलब चौकीदारी के लिए। और हम अपने को इसका मालिक समझें, दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। सबसे बड़ा पाप यह है। एक महात्मा हो गए, बहुत अच्छे महात्मा, अभी 6-7 साल हुआ उनका शरीर छूटा, 112-13 वर्ष की उम्र उनकी, कल्याण देव जी महाराज। उन्होंने पश्चिम भारत में कितने स्कूल कॉलेज बहुत बनाए। भागवतान जी उनके साथ में थोड़ा रहते थे, इतना कपड़ा पहनते थे वो कहते थे हम परमात्मा के भाई ट्रस्टी हैं। बोले महाराज ये आश्रम आपका है। बोले ना तुम पाप करो ना हमको पाप वाली बात सुनने दो। नहीं, हमारा हम उसके सेवक हैं। सबसे कठिन काम ये है कि बुद्धि में ये बात बैठी रहे कि ये किसी और का है, और जब ये बात आपकी निश्चित हो जाती है तब उसी का नाम है अनविस्नेह। कुंती ने कृष्ण के लिए कहा कि कृष्ण के अंदर अनविस्नेह है। कुंती को दुनिया में कोई आदमी नहीं, तो हम तो दूसरे की वस्तु को मिलते ही तुरंत अपने ही समझने लगते हैं। तुम्हारा बड़ा कीमती फोन हो, है नहीं तेरे पास कुंती फोन तो, लेकिन क्यों कीमती फोन हो और गिर जाए रास्ते में, भगवान करे, और किसी को मिल जाए तो 2 मिनट में ऐसी बुद्धि होने लगती है मेरा हो गया अभी। ना हमने उसको प्राप्त करने के लिए धन कमाया, ना मेहनत करी, ना दुकान में गए, 2 मिनट में हाथों ने छुआ और वो। और यदि मालिक आ जाता है तो मन दुखी हो जाता है। हकीकत में साधक तो आप उस समय हैं वो फोन आए और आपके चित्त की व्यग्रता बढ़ जाए, कब इसका मालिक मिलेगा, कब मेरे सिर से बोझ उतरेगा। पुराने जमाने में ये बातें अभी समझ में अब आती हैं। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, जब हम छोटे थे तब की बात है, 50 साल हो गए, 50 साल पुरानी बात है, लोग कहे भगवान की बड़ी कृपा है महाराज, किसी का कर्जा हमारे ऊपर नहीं है। लोगों की ऐसी भावना होती थी। तो भगवान जो कह रहे हैं कि सब जगह कहीं यह सर्वत्र अनविस्नेह, किसी वस्तु के प्रति ये बुद्धि नहीं कि ये वस्तु मेरी है, ये तभी संभव है जब आपका ये निश्चय हो जाए ये वस्तु परमात्मा की है। जगत में मालिक का निश्चय नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हम अपने को मालिक मान बैठते हैं। समझ में आई बात? तो यह सर्वत्र अनविस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। यद्यपि ऐसे लोग सामर्थ्यवान होते हैं, समर्थ होते हैं, शंकराचार्य ने लिखा है देह जीवितादिषु अपि अनविस्नेह, आदि शंकराचार्य इसके भाष्य में लिखते हैं, क्योंकि सुविच्छा शुभ विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति है, नहीं है असंशक्ति, असंशक्ति जिस साधक के अंदर, अब आप विचार कर लेना उनमें से हमारे कौन है। हम तो विचार करते हैं, हम तो कोई है ही नहीं उसमें से। शंकराचार्य ने अर्थ किया उसका देह के प्रति भी मोह नहीं रहता। क्यों मोह नहीं रहता होगा देह के प्रति? हम लोग सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज, उनको जिस ब्राह्मण ने जहर खिलाया उसको उन्होंने भगा दिया। सुना होगा आप लोगों ने, उनकी जीवनी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। उनको मानने वाले बहुत लोग थे, उन्होंने कहा ब्राह्मण को कोई मार देगा। और ये यदि इतना समझदार होता तो कभी खिलाता ही नहीं। देह के प्रति भी मोह नहीं है, जीवन के प्रति उसका कारण है, एक बड़ा राज है इस बात में। राज ये है कि देह से जो साधना था वो उन्होंने साध लिया। बस हमारी जिंदगी में एक ही कसक रहती रह जाती है कि हमें जो साधना था वो हमने साधा नहीं, हमें जो पाना था वो हमने पाया, हम किसी और चीज में लग गए। आए थे हरि भजन को वोटन लगे कपास, कहीं और ही उलझ गए हम। उसका देह के प्रति भी मोह नहीं रहता। और वो मैंने आपको दृष्टांत दे करके बता दिया कि वो जड़ भरत जी महाराज में आप घटा लेना।
अच्छा,
नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब उसका अर्थ कर रहे हैं, ये प्रज्ञा है। प्रज्ञा शब्द का अर्थ 53 नंबर के श्लोक में यदि आप देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। भाष्यकार ने वहां पे वो जो लिखा है ना कि भाई तदा बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, योग शब्द का अर्थ जो है भाष्यकार ने कहा किया है वहां पे विवेक प्रज्ञा। योग का अर्थ हो गया विवेक प्रज्ञा। और वो योग नाक दबाने वाला भी योग है, वो बहुत जरूरी है शरीर को शुद्ध करने के लिए। लेकिन असली योग है कि आदमी के पास में, तो जड़ भरत के पास में विवेक प्रज्ञा है। वो बलि देने वाले को कुछ कह नहीं रहा है, हार पहनाने वाले को कुछ कह नहीं रहा है। कैसी एक विलक्षण बात है, जो हार पहना रहा है, क्रिया में हार पहना रहा है, लेकिन कहीं बलि देने की तैयारी कर रहा है। जड़ भरत शांत बैठे हैं, यद्यपि वो प्रज्ञावान व्यक्ति है सब जानते हैं, लेकिन प्रज्ञा ऐसी है कि डामाडोल नहीं। क्यों? इसका कारण क्या है मालूम है आपको? क्योंकि एक निश्चित है, जो होना है वही होना है। जो नहीं होना है वो नहीं होना है, इतना निश्चय जब व्यक्ति को होता है तो जिंदगी की तीन तिगड़म सब खत्म हो जाती है। तीन तिगड़म का अर्थ ही ये है कि जो नहीं होने वाला है हम वो कर दें, जो होने वाला है उसको हम निवारण कर दें। नहीं, एकदम दृढ़ निश्चय है। तो यहां तक जो है ये असंशक्ति हो गई। अब यहां तक तो सिद्ध, यहां तक सिद्धों की बात आ जाती है। अब आई सत्वापत्ति। जरा सुन लीजिए अब थोड़ा सा इसको, ये भी बड़ा कठिन है। क्या कहते हैं देख लीजिए थोड़ा सा। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानिव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। आप एक श्लोक भगवद गीता में आता है, विषया विषयेषु, सुना है आपने, वर्तन्ते विषय विषयों में वर्तन करते हैं। इसका अर्थ समझते हैं आप लोग क्या होता है, क्या अर्थ है इसका, विषय विषयों में वर्तन करते हैं। विषया विषयेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, क्या अर्थ है इसका, विषया विषयेषु वर्तन्ते। सुना तो बहुत है आपने, उसका अर्थ ही यह है, है? अच्छा अच्छा सांभो फिर, बड़ी मजेदार बात कहते हैं। जैसे आंख है ना, विषया विषय वर्तन्ते ऐसा नहीं है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते ऐसा है, लेकिन अर्थ उसका वही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्तन कर रहे हैं, तो गुण गुणों में वर्तन करने में गुण का अर्थ हो गया इंद्रिय और गुण का अर्थ हो गया विषय। बहुत विचार यदि करोगे आप तो इंद्रिय और विषय का आपस में संबंध है। जैसे कभी आप कहीं जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए, 10-15 दिन के लिए बाहर गए आप, 10-15 दिन के बाद आए और अचानक आपका पुत्र आपका पोता आ गया है। आजकल के बुड्ढों को पुत्रों से तो कम प्रेम रहता है, पोतों से ज्यादा रहता है, क्योंकि बेटे जो है सामने बोलने शुरू कर दिया अभी, तो पोतों से बहुत प्रेम रहता है, एकदम उठा के गले लगा दिया। उसका कारण क्या है कभी सोचा आपने? कहीं वो पोते में अपने को देखता है। तो जिंदगी में जो खुशियां होती हैं वो आत्मा को पाके खुशी होती है, अपने को पाके खुशी होती है। बुद्ध की खुशी कोई हीरे का उसने हार पहना हो, सोने की छड़ी रखी हो, किसी सिंहासन जड़ित उसमें बिठा दिया हो, तब बुद्ध की खुशी उसकी खुशी नहीं है। बुद्ध की जो खुशी है वो अपने को पाने की खुशी है। क्यों अपने को पाने की खुशी मालूम है? क्योंकि अपना स्वरूप जो है वही परमात्मा है, अपना रूप परमात्मा नहीं है, अपना स्वरूप परमात्मा है। और मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझना आप, भागवत में लिखा है राजा परीक्षित के चेहरे में उदासीनता, हस्तिनापुर के वैभव का मालिक चेहरे पर उदासीनता, इतने नौकर चाकर और एक आदमी आ रहा है उसके चेहरे पे ऐसी खुशी। भागवतकार लिखते हैं, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट, ऐसी खुशी जैसे इस व्यक्ति ने अपने को पा लिया हो। दूसरे को पाने की इतनी खुशी नहीं होती, क्यों? उसको छिनने की संभावना है, लेकिन अपने को पाने की जो खुशी है, आपको आपसे कोई छीन नहीं सकता, उसका नाम है निज लाभ तुष्टा। निज मैंने अपने को, लाभ मैंने पाना। इस दुनिया में हम सबको पाते हैं, लेकिन अपने को खो के पाते हैं। ऐसा हो गया जैसे कोई तुमको कहे कि प्रेमपुरी के पांचवें माले से कूद जाओ, तुम्हारे को 10 करोड़ देंगे, तो कूदो ना फिर। सब आत्महत्या करके पाते हैं हम। वो तो कहे सुखदेव निज लाभ तुष्टा, उस आदमी ने अपने को पा लिया, और अपने को पा लेने का मतलब ये होता है, जरा बहुत गौर से विचार करेंगे कि हमारी खुशी का कारण वो है जिसे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। जवानी खुशी का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज को हमसे अलग हो जाती है। प्रारब्ध है, पति पत्नी है, सब कुछ है, वो हमसे अलग हो जाते हैं, लेकिन हमें हमसे अलग करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए वो जब आपकी खुशी के कारण आप बन जाते हो ना, उस समय आपका जो चित्त होता है यह सर्वत्र अनविस्नेह। वो जड़ भरत जी का दृष्टांत ले लेना। दूसरा हमने किसका दिया? ऋषभ देव का। हाँ, जो भाष्यकार ने लिखा कि जीने का प्रयोजन सिद्ध हो गया, जिस प्रयोजन से जीवन धारण किया था। हमारी मुसीबत यही है, हम अपने जीवन का प्रयोजन कभी पूरा नहीं कर पाते। हजार बार जन्मते हैं, हजार बार मरते हैं, और तब तक जन्मना पड़ेगा और तब तक मरना पड़ेगा जब तक जीवन का प्रयोजन पूरा न हो जाए। और जीवन का प्रयोजन ऐसी वस्तुओं से पूरा नहीं हो सकता, इसलिए भगवान ने कह दिया। अब उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं कुर्म का। कुर्म बोलते हैं कछुए के लिए। कछुए के दृष्टांत भगवान को याद आ गई अपने पूर्व जन्म की। हाँ, जब कछुआ का अवतार लिया होगा ना, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना, तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतप। कछुए का जन्म लेकर के उन्होंने क्या किया था वो है बेचारा का चक्कर। तो उसकी जो व्याख्या है ना, वो आप लोगों के सामने कल करूंगा मैं। तो देखो, तुरिया का हो गया, पदार्थावनी का हो गया, और फिर जो है अब जो है असंशक्ति का भी हो गया, अब है सत्वापत्ति का। अब सत्वापत्ति की जो चर्चा है वो आप लोगों के सामने कल करेंगे।